तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। तो संस्कार परिवर्तन योग तपस्या अनुभूति के लिए भट्टी का स्वागत तो कल हो ही गया, लक्ष्य भी मिला और आज से उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ज्ञान योग के सत्रों का शुभारंभ होने जा रहा है। और इस शुभारंभ की वेला में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी रुपेश भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर अपने कदम आज से 30 साल पहले रखे थे और उसके 2 साल बाद ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए संपूर्ण रीति से समर्पित किया। ज्ञान सरोवर में आप रहते हैं और वहां रहते ही आपके इस ईश्वरीय जीवन का सफर आगे बढ़ता गया। सूरज भाई के संग रहते रहते ज्ञान योग की अच्छी पकड़ रही और फिर पीएम टीवी में समाधान समस्या का समाधान में एंकरशिप करके न सिर्फ आप सूरज भाई की बातों को विश्व भर में पहुंचाने के लिए निमित्त बने, लेकिन वो बातें आपने अपने अंतर मन में भी धारण कर ली और आप भी एक सक्षम योग भट्टी कराने वाले एक टीचर बन गए। आप स्पार्क विंग में भी कोर ग्रुप मेंबर के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, यूथ में कमेटी मेंबर के रूप में, और चूंकि ज्ञान योग की अच्छी पकड़ है तो देश और विदेश में बाबा का संदेश, बाबा का ज्ञान सबको देने के लिए यात्राएं करते हैं और आज हमारे सम्मुख हैं। आज का विषय है आत्म शुद्धि का आधार आंतरिक तपस्या। आत्म शुद्धि का आधार आंतरिक तपस्या, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय रूपेश भाई जी।
ओम शांति। भट्टी की शुरुआत है और अच्छा लग रहा है सभी टीचर्स बहने आज स्टूडेंट बन के बैठे हैं, रोज सबको पढ़ाते हैं और जब मधुबन आते हैं तो सब बच्चे बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ पूरी जीवन है ना। दीदी यज्ञ की हेड होते हुए भी सबसे पहले डायरी पेन लेके मुरली क्लास में है। जब स्टूडेंट हैं तो सीखते सीखते संपन्न और संपूर्ण बनते हैं। जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि हमने सब जान लिया, उस दिन हमारा विकास, हमारी उन्नति ठहर जाती है। तो अगले तीन दिन जब तक मधुबन में हैं, हमें बहुत गहराई से अपनी साधना करनी है, तपस्या करनी है। भट्टी का अर्थ ही होता है, भट्टी का क्या अर्थ है? तपना। भट्टी अर्थात स्वाहा, स्वाहा जो भी अंदर है स्वाहा। भट्टी अर्थात सफाई, जो भी कचरा निकला उसे अर्पित। भट्टी अर्थात आईना, अपने आप को देखना। जो बाबा कहते हैं कहां तक पहुंचे हो, कहां तक बने हो, ऐसा ना हो कि नारद जी की तरह हम भी पहुंच जाएं लक्ष्मी जी के पास और वो आईना दिखा दे। तो इससे पहले कि कोई दूसरा हमें आईना दिखाए, भट्टी में हम खुद ही आईना देख लें। इसलिए भट्टी हमें एक सुंदर अवसर प्रदान करती है। और भट्टी अर्थात भरना, भरना खुद को, सफाई कर देना और उसके बाद अपने अंदर भरना ईश्वरीय गुणों को, शक्तियों को, वरदानों को, ज्ञान को गहराई से भरना। इसके लिए हम सब आए हैं ना। तो अच्छे से आईने में खुद को देखेंगे और आईना देख के क्या करते हैं, यदि कहीं पे भी दाग धब्बा लगा होता है उसे साफ करते हैं, बाल ठीक नहीं है बाल ठीक करते हैं। ऐसा तो नहीं कि गंदगी दिख गई उसके बाद वैसे ही निकल जाते हैं, दाग धब्बे लगे हुए हैं वैसे ही निकल जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। आईना देखने का ही अर्थ है अपने आप को ठीक करना, कमियों को भरना, दूर करना, अपने आप को श्रृंगारना। तो ये हमें भट्टी में करना है। जब भी मधुबन के प्रांगण में आना होता है तो शुरुआती दिन याद आ जाते हैं, कि शुरुआत पांडव भवन से ही हम सब की हुई थी समर्पणता से पूर्व। डेढ़ वर्ष ही हुए थे ज्ञान में, मधुबन आ गया, लगन थी कि बस ये अंतिम जन्म बाबा के लिए है, बाबा की गोद में ही बिताना है। डेढ़ वर्ष में यहाँ कुछ नहीं आता था, छोटे थे, बस योग करना तपस्या करना आता था, उसके अलावा और कुछ नहीं आता था। तो अपनी लगन में ही पहुंच गए। किचन में सेवा, अब किचन का ABCD भी पता नहीं था कि खुरपा क्या होता है, केवी क्या होता है, वो सब नए शब्द थे। ये कहता था केवी ले आओ, तो हमें लगता था केवी क्या चीज होती है, खुरपा क्या होता है। एक बार पकोड़े तल रहे थे शुरुआती दिनों में, तो पकोड़े जब बन गए तो उसका चूरा चूरा रह जाता है ना तेल में, बड़ी कढ़ाई में यहां बनता है। तो जब पकोड़े बन गए, सब चले गए, तो हमारे जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि इसकी सफाई कर देना। अब पता ही नहीं था इसकी सफाई कैसे करें, उस समय बड़ा वाला झारा वहां रखा हुआ था, एक बारीक झारा भी होता है जिससे हम सफाई करते हैं। तो मैं बड़े झारे से ही निकाल रहा था लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। अब लगा मैं इसकी सफाई कैसे करूं, सब चले गए। तो जो स्टीम में हम लोग भोजन बनाते हैं ना, देखा है ना, तो जब चावल बनाते हैं तो चावल को चेक करने के लिए एक वो होता है, छन्नी होता है, बड़ी वाली छन्नी होती है, उसे डाल के निकाल के चावल चेक करते हैं। तो मैंने सोचा इस बड़े से तो निकल नहीं रहा है, मैं उस छन्नी से सफाई करता हूँ। तो प्लास्टिक की छन्नी होती है वो। वो प्लास्टिक की छन्नी ले आया, अब था वो तेल का पूरा, उसमें कचरे थे, मैंने पूरी छन्नी घुमा दी कि कचरा सारा निकल जाएगा। अब कचरा तो नहीं निकला, वो छन्नी पूरी चली गई उसमें। मैंने कहा ये होल कैसे हो गया, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इतना तो आता है ना व्यक्ति को, लेकिन वो चीजें भी नहीं आती थी। अब हमारे और बड़े थे, उन्होंने कहा, आप शुरुआत तो आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा चलो झाड़ू वाड़ू लगाना है तुमको। मैंने कहा झाड़ू तो मैं समझ गया, वाड़ू क्या है, बोले पहले झाड़ू लगा। मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैंने कहा वाड़ू क्या है, बोले अब पोछा लगा। लेकिन एक लगन थे ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि आपको एक लगन है, तड़प है, कुछ करना है, कुछ बनना है, तप करना है, तो ये सब चीजें मायने नहीं रखते। धीरे धीरे हमारी तपस्या ही हमें सब चीजें सिखा देती है। तो 1.5 साल में मैं यहां आ गया था, तो लक्ष्य था 1.5 साल में जब मैं मधुबन आ गया तो अगले 1.5 साल में मुझे संपूर्ण बन जाना है, बाबा के पास पहुंच जाना है 1.5 साल में। इसलिए सेवा और तपस्या, चारों धाम, कभी बाबा की पहाड़ी, कभी ओम शांति भवन के पीछे बहुत सुंदर सा एक बगीचा है पीछे, वहां। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी प्राप्ति हुई है हम में से हरेक को, वो साधना के तपस्या के आधार पर ही हुई है। साधना और तपस्या, क्या हम जो भी हैं, आज हैं या कल होंगे या फिर आने वाले कल नई दुनिया में होंगे, तपस्या के आधार पर, योग के आधार पर। जिसे बाबा कहते हैं ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना सकता है, लेकिन तप सभी से नहीं होता, योग सभी से नहीं होता, और इसके लिए हम सब यहां बैठे हैं ना। कुछ साल पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था, वो एक मेंटलिस्ट थे, मतलब जो माइंड रीड करते हैं ना, संकल्पों को कैच करते हैं, तो संकल्पों को कैच कर सकते थे। अभी YouTube में वो किसी ने भेजा तो कईयों ने देखा, तो आप क्या सोच रहे हैं वो पढ़ सकते। तो मेरे पास भी उन्होंने कुछ प्रश्न दिए, मैंने मन में सोचा और उन्होंने बता दिया कि आप ये सोच रहे हो। तो हमारे यहाँ के कुछ भाई, एक भाई हमारे यहाँ 2 बजे से उठ के योग करते हैं, तो किसी ने कहा देखो तुम 2 बजे से इतने सालों से योग कर रहे हो और तुम्हारे अंदर कुछ आया ही नहीं अभी तक, तुम क्या पढ़ के बता सकते हो किसी का माइंड? मैं वहीं था, मैंने उनको यही कहा जो हमारा आज का विषय है। हमारी तपस्या बाहरी नहीं है, चमत्कार दिखाने वाली तपस्या नहीं है। हमारी तपस्या है आत्मशुद्धि के लिए, आत्मकल्याण के लिए। हमारी तपस्या है अपनी उत्थान के लिए। और केवल आत्मशुद्धि नहीं, आत्मशुद्धि कहते हैं तो एक छोटा सा शब्द लगता है हमें, लेकिन हमारी तपस्या हमें विशाल कर देती है, बेहद में ले जाती है। आज भी बाबा कह रहे थे, योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आत्मा शुद्ध और पावन होती चलेगी। योग से ही आत्मा के सातों गुणों का और सर्व गुणों का विकास, केवल शुद्धि नहीं हो रही है लेकिन सर्व गुणों का विकास होता है तपस्या से। आत्मिक गुण और आत्मिक गुण के माध्यम से फिर सर्व गुणों का। तपस्या से ही हमारी सर्व शक्तियां जागृत होती हैं। साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि हम केवल 5-7% अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तपस्या ही वो साधन है, साधना से ही हमारी सर्व शक्तियां जागृत होती हैं, जिसके आधार पे हम विश्व के मालिक बनकर के विश्व पर राज्य करते हैं, जिसके आधार पर सारी प्रकृति भी हमारे अधीन होती है, हमारे ऑर्डर पर चलती है। तपस्या, साधना, इसके आधार पर ही हम खुद को जानते चलते हैं। खुद को जानना, देखिए हमें 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, हमने खुद को कितना जाना है? इसलिए तपस्या अर्थात अपने साथ वक्त बिताना, अपने आप को जानते जानना कि मैं कौन सी आत्मा हूं। हम ये देखें भट्टी में, हम अपने साथ सारे दिन में कितना वक्त बिताते हैं, अपने आप को कितना देखते हैं। आत्मशुद्धि तब होगी जब हम आत्मदर्शन करेंगे। आत्मदर्शन, परदर्शन तो हम करते हैं, दुनिया का दर्शन हम करते हैं, आत्मदर्शन कितना होता है, आत्मचिंतन कितना होता है, आत्मा के गुणों का चिंतन, आत्मा की विशेषताओं का चिंतन, अपने स्वस्वरूप में हम कितना स्थित रहते हैं। यहां स्थित होकर के मैं कर्म करता हूं या देह भान में रह करके फिर बार बार मुझे मेहनत करनी पड़ती है कि मैं अपने आत्मा के स्वरूप में आऊं। शुद्धि से पहले हमें दर्शन करना होगा, उसका सुंदर चिंतन करना पड़ेगा, आत्मा लाभ करना पड़ेगा, अपने आप से बातें कि हे आत्मन, तूने सारे कल्प तो औरों को ही देखा है और फिर सारे कल्प औरों को ही देखेगा, ये वक्त है खुद को देखने का। हे आत्मन, सारे कल्प तुमने औरों से ही बात किया है, औरों से ही बात करेगा, ये वक्त है खुद से बात करने का, आत्मा लाभ करने का। जब हम खुद से बात करते हैं, अपने मन से बातें करते हैं, मन को ये समझाते हैं कि मन तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, जब हम बैठते हैं उनसे बात करते हैं, तब उनकी समझ में आता है कि क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, तब वो संयमित होते हैं, संतुलित होते हैं, सही पथ पर चलते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपना दरबार लगाओ। बाबा ने कितना दरबार लगाया ना, और दरबार लगा लगा के खुद को संयमित किया, दरबार लगा लगा के सभी अपने कर्मचारियों को कंट्रोल में रखा, नियंत्रित किया। हम देखें हम कितना अपने साथ बैठते हैं, कितना वक्त अपने साथ बिताते हैं, कितना अपने मन बुद्धि से बातें करते हैं, कितनी हमारी चेकिंग खुद की रहती है कि सब चीजें एक्यूरेट चल रहा है। राजा अच्छा वो जो अपनी प्रजा का, अपने कर्मचारियों का ध्यान रखे। तो आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्मलाभ, आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण, ये हमें आत्मशुद्धि की ओर लेके चलेंगे। इस प्रक्रिया में हम कितने हैं, कितना हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं कि उधर ही चल रही है हमारी गाड़ी जिधर चलनी चाहिए या कहीं और जा रही है। इसलिए तो चार्ट का महत्व है, इसलिए दरबार का महत्व है, इसलिए इस भट्टी में आत्मदर्शन, अपने आप के साथ समय बिताना है। औरों के साथ बहुत हमने समय बिताया, अब अपने साथ, अपने को देखते हुए, अपने को श्रृंगारते और निखारते हुए, कमियों को दूर करते हुए और साथ ही अपने लिए सुंदर प्लानिंग बनाते हुए। जब हम तपस्या कहते हैं तो ये तपस्या अपने आप से मिलन के साथ साथ प्रभु से मिलन की बात है ना। तो आत्मदर्शन में जो एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं आप सबका बहुत ध्यान दिलवाना चाहता हूं वो यही है कि मैं कौन हूं। इस बात को हम बहुत गहराई से रियलाइज जरूर करते चले, आत्मिक स्थिति के साथ साथ अपने स्वमानों की सुंदर अनुभूति करते चले। जितनी अच्छी ये फीलिंग होती जाती है कि सारी कल्प में मेरा क्या रोल रहा है और मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो अपने स्वमानों की सुंदर स्मृति हमें श्रेष्ठ नशे में स्थित करती जाती है और ये हमारी साधना को बहुत सहज करता है, मेहनत नहीं करने देता, मेहनत की अनुभूति नहीं करने देता, लेकिन हमारी साधना को ये श्रेष्ठ स्मृतियां, श्रेष्ठ स्वमान बहुत सहज और सरल कर देता है। इसलिए तपस्या का अर्थ ही है ना, श्रेष्ठ स्वमानों और श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना, ये तपस्या है। तो अपने आप से हम बहुत बारीकी से पूछते रहे सारे दिन, मैं कौन, मैं कौन, और उस सुंदर स्वरूप में स्थित होते चलें, उसकी अनुभूति करते चलें, उसकी गहराई में उतरते चलें। केवल स्मृति नहीं, लेकिन उस स्मृति को स्वीकार करें और साथ ही उसकी अनुभूति करें। और मैं कौन के साथ तपस्या अर्थात मेरा कौन, मेरा कौन की स्मृति, उसके हम कितना साथ रहते हैं, हमारे लिए वो आए हैं और थोड़े समय के बाद वापस भी चले जाएंगे। ये हमारे पास सुंदर वक्त है, जितना वक्त है मैं उनके साथ कितना समय अपना बिताता हूं। यदि सूर्य की तरफ मुख होगा तो संसार की सारी प्राप्तियां स्वतः पीछे पीछे आएंगे, हमें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सेवाएं भी हमारे पीछे आएंगी, सर्व प्राप्तियां भी हमारे पीछे आएंगे, लेकिन मुख मेरा सूर्य की ओर होना चाहिए, मुख मेरा परमात्मा की ओर होना चाहिए। तो तप का भाव है मुख उसकी ओर और साथ ही उसका संग, तभी मेरे अंदर तो वो रंग उतरता चलेगा। अब ये देखें जो हमने प्रॉमिस की है बाबा से, तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलूं, तुझ संग बैठूं, तुझ संग हर कर्म करूं, उस वायदे में हम कितना खरे उतरते हैं। केवल वही एक संसार है या संसार में और भी कोई दूसरा शामिल है? संबंधों की हमें कितनी गहन अनुभूति है उनके साथ, सर्व संबंध मेरे उनके साथ है। मैं कहता हूं कितना मैं उनके साथ संबंधों को निभा रहा हूं, अनुभूति कितनी है। जब उसके साथ हैं तभी फिर हम आत्मशुद्धि की जो बात है वो संपूर्ण हो सकती है, अन्यथा तो अशुद्धियां चारों तरफ हैं, चारों तरफ। पवित्रता की जो स्टेज है, बाबा ने 30 जनवरी के मुरली में बात कही थी, मन की भी पवित्रता, वाणी की भी पवित्रता, कर्म की भी पवित्रता, संबंध संपर्क की भी पवित्रता, दृष्टि की, वृत्ति की और साथ ही स्वप्न की भी पवित्रता, ये सात शुद्धि बाबा ने कहे थे, सात पवित्रता बाबा ने कहे थे। और ये तभी संभव है जब उसके साथ हैं, वो साथ है, उसके साथ कंबाइंड है, अन्यथा तो दाग लगते ही रहते हैं। आत्मा की भी ड्रेस के लिए बाबा ने कहा था, जो हम आत्मशुद्धि की बात कर रहे हैं, पांच प्रकार की ड्रेस बाबा ने कही थी कि ये ड्रेसेस नहीं पहनने हैं तपस्वी को, तुम्हें मिट्टी का ड्रेस, अब चेक भी करेंगे इस भट्टी में, मिट्टी की ड्रेस कितना पहन के रखते हैं। मिट्टी की ड्रेस पहन के रखना अर्थात देह के भान में रहना, चमड़ी की ड्रेस पहन के रखना अर्थात चमड़ी को ही देखना, बदबूदार ड्रेस पहन के रखना अर्थात दूसरों के लगाव झुकाव में रहना, देहधारियों के लगाव झुकाव में रहना, दाग धब्बेदार ड्रेस वो है दूसरों की कमी कमजोरियों को ही देखते रहना, तो वो दाग धब्बा लगता रहता है। और पांचवी ड्रेस बाबा ने कही रक्त रंजित ड्रेस, रक्त रंजित अर्थात बार बार भूलें करते रहना, छोटे मोटे पाप करते रहना और पश्चाताप करते रहना, तो भूलें करते रहेंगे तो वो ड्रेस भी तो गंदी हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा ये ड्रेस नहीं, अपनी सुंदर फरिश्ते की ड्रेस, अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हुए फरिश्ते की या देवताई ड्रेस, ये हमारी तपस्या है सुंदर। तो मेरे में, मेरे के साथ जो हमारी फीलिंग है, हमारी तपस्या अर्थात उस एक के साथ, मैं उसका और वो मेरा, वो मेरा संसार, उसके साथ ही मेरी सुबह से लेकर रात तक की सुंदर दिनचर्या, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना, ये सब चीजें मेरी उसके साथ हो, तभी तो कहेंगे ना कि प्रेम है। अन्यथा कहीं और यदि प्रेम है तो फिर हमारा भटकाव होने लगता है बुद्धि का, इसीलिए तपस्या अर्थात एक के साथ। एक बार पांडव और द्रौपदी या सभी कहीं जा रहे थे, अज्ञातवास का समय था, एक वृक्ष था उसके फल गिरे हुए थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो ये ऐसा वृक्ष है, इसके फल को कोई भी, टूटे हुए फल को भी लगा सकता है वापस, लेकिन वही लगा सकता है जो बिल्कुल संपूर्ण पवित्र हो, मन में भी कोई दूजा नहीं हो, बस एक व्रता हो। द्रौपदी ने कहा मैं तो ऐसी हूं, बस पति ही मेरे परमेश्वर हैं, एक व्रता ही हूं मैं, लगा सकती हूं। उन्होंने लगाया लेकिन लगा नहीं, तो उनका संकल्प चला कि ऐसा कैसे हुआ, ये लग क्यों नहीं रहा है। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो एक बार तुम अपने महल के छत में खड़ी हुई थी, उधर से कर्ण अपने रथ पे सवार होके जा रहे थे, और कर्ण तो बहुत तेजोमय थे ना, बहुत ही वीर सूर्य पुत्र थे, तो बहुत तेज था उनमें, तो उनके मन में आया कि वाह कितना अच्छा, मतलब पुरुष है, वीर है, योद्धा है, कितना आकर्षक है। कहा मन से जब तुम उसकी ओर आकर्षित हुई थी तब तुम्हारा ये व्रत भंग हुआ था। तो पतिव्रता या एक व्रता का कितना गहन भाव बाबा ने बताया है। जब ये भाव हमारे अंदर है, जब इस अभ्यास की ओर हम बढ़ते हैं, तब आत्मा संपूर्ण रूप से शुद्ध होती है ना। और यदि कहीं भी लगाव में है, झुकाव में है, प्रभाव में है, तो वो दाग आत्मा पे लगते रहते हैं, वो संपूर्ण पावन नहीं होने देती आत्मा को। इसीलिए हम एक के होकर रहे, एक व्रता होकर के, यह हमारा बहुत सुंदर व्रत है, एक ही तो हमारा कल्याणकारी है, एक ही तो हमारा हितैषी है, एक ही तो हमारा परम मित्र है, वही तो हमारा कल्याण करने वाला है, उसको ही तो हमने जीवन दिया है। और आज मीठे बच्चे में भी क्या था, जीवन डोर तुम ही संग बांधे, एक से कनेक्शन, एक से रिलेशन, किसी और से यदि कनेक्शन जोड़ा तो बाबा ने कहा फिर वो धोखा भी खाएंगे, दाग धब्बे की बात होगी। ये हमारी तपस्या है। तपस्या अर्थात अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना, भट्टी में ये जरूर करेंगे। तपस्या अर्थात स्थिर हो जाना। बाबा ने कहा नंबर वन में वही आएंगे जो अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे, एकाग्र, एक में स्थिर, जिसको बाबा कहते हैं तुम जब चाहो, जहां चाहो, जिस रूप में चाहो अपने आप को एकाग्र कर सको। क्या हमारी ऐसी स्थिति है कि मैं जब चाहूं, जिस भी स्वरूप में चाहूं अपने आप को स्थित कर सकूं? ये एकाग्रता हमें बढ़ाते चलना है। अभी कितनी देर है, कितना वक्त मुझे लगता है, बाबा कहते हैं एक सेकेंड का ही पेपर होगा, ज्यादा वक्त तो मिलेगा नहीं ना। तो यदि एक सेकेंड से ज्यादा वक्त हम लगाते हैं अपने आप को स्थिर करने में, तो फिर वक्त तो निकल जाएगा ना। इसीलिए इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है, स्थिर अपने मन और बुद्धि को। इसकी सुंदर ड्रिल योग भट्टी में जरूर करें, यहां भी जो हो उसमें भी, और चलते फिरते भी इन अभ्यासों को जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी एकाग्रता, हमारी स्थिरता ऐसी हो कि कोई भी हलचल की स्थिति में हम अपने आप को स्थिर कर पाए। उस समय मन स्थिर नहीं होगा, अब भूकंप आ रहा हो, सिविल वॉर चल रहा हो, लोग आपका दरवाजा पीट के घर के अंदर घुस जाना चाहते हो, भारी बाढ़ के बीच आप फंस गए हो, तो मन स्थिर होगा, एकाग्र होगा। अभी जब ऐसे सुंदर माहौल में बैठ करके हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे एकाग्र हो पाएगा। और परीक्षा अर्थात ये सारी स्थितियां तो होंगी ना चारों तरफ, परीक्षा का मतलब ही ये है ना कि चारों तरफ ऐसी स्थितियां हो, विकट परिस्थितियां हो, और उसमें भी आप अपने आप को स्थिर कर लें। ये प्रैक्टिस की बात होगी, इसलिए हम अपनी प्रैक्टिस को जरूर बढ़ाएं। तपस्या इसलिए भी क्योंकि बाबा ने कहा है कि तपस्या तुम्हें पूरे यूनिवर्स से जोड़ देती है, यूनिवर्स से, पूरी प्रकृति को, पांचों तत्वों सहित हमें पूरे ग्रह नक्षत्रों को भी तो पावन और श्रेष्ठ करना है। तो जब बीच से जुड़ जाते हैं तो पूरे यूनिवर्स से भी जुड़ जाते हैं। इसलिए बाबा का एक सुंदर महावाक्य है कि तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर, शांति की किरणें लेकर, पवित्रता की किरणें लेकर पूरे विश्व को देना। इसके अलावा तुम अन्य जो सेवा करते हो वो केवल निमित्त मात्र है। तो हम उनसे लें और पूरे यूनिवर्स को दें, ये भी तपस्या हमारी, ये भी साधना हमारी, बहुत बड़ी सेवा है ना। जिस मनसा सेवा की बात बाबा ने बार बार रिमाइंड कराई, तो मेरी शुद्धि तो होगी होगी, लेकिन स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन, स्व की शुद्धि से सारे विश्व की शुद्धि, तो मैं उनसे लूं और सारे यूनिवर्स को दूं। ये वक्त है सारे विश्व के कल्याण का, सारे विश्व को पावन करने का। और साधना ही हमें उनसे कनेक्ट करके सबको शुद्ध भी करती है और साथ साथ हमें सत्य से अवगत भी कराते। इस सृष्टि के जो रहस्य हैं वो साधना से ही हम समझ सकते हैं। मेरा भी रोल क्या है और साथ ही साथ सृष्टि में जो चल रहा है वो सब क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब जानकारी हमें साधना से ही प्राप्त हो पाती है। ये समझ विकसित होती है और जो इस सत्य को समझ लेता है वो स्थिर हो जाता है। बाबा क्यों स्थिर है, क्यों साक्षी है? क्योंकि संपूर्ण सत्य उनके पास है ना। हम भी जब साधना के माध्यम से उनसे जुड़े रहते हैं तो इस सत्य को समझ पाते हैं कि संपूर्ण सत्य है क्या, और ये समझने का समय भी तो यही है। न केवल ये, लेकिन हम क्रिएटर बनते जाते हैं, मास्टर क्रिएटर। तपस्या हमें मास्टर क्रिएटर बना देती है। मैंने कहा ना, शुद्धि केवल एक छोटा सा शब्द लगता है, न केवल आत्मा की शुद्धि साधना से, लेकिन आत्मा की शुद्धि के साथ साथ साधना आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, साधना आत्मा को सफलता प्रदान करती है, साधना आत्मा को संपन्नता और संपूर्णता की ओर ले चलती है, साधना ही सिद्धियां प्रदान करती है, जो आज भी बाबा की मुरली में था ना, सर्व खजाने औरों की सेवा में लगाएं, सिद्धि स्वरूप बने। तो सिद्धि हमें साधना से मिलती है, और इन सिद्धियों की हमें आने वाले समय में बहुत आवश्यकता होगी ना। जबकि हम कुछ संकल्प करेंगे, सामने वाली आत्मा भरपूर हो जाएगी, उसका मन शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएंगे, उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगे। ये साधना के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। तो सत्य को जानने के साथ साथ साधना के माध्यम से हम सिद्धि भी अर्जित करते चलें, ताकि आने वाली सेवाओं के लिए तैयार हो सकें। लेकिन इसके लिए हमें निरंतर योग की ओर बढ़ना होगा। एक दो घंटे के योग से नहीं होगा। मैं यही कहूंगा कि यदि 3 दिन हैं अभी भट्ठी में, अपने योग के चार्ट को बहुत अच्छा करो, 8 घंटे तक ले चलो। बाबा कहते हैं ना, मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वो हैं जो मुझे कम से कम 8 घंटे याद करते हैं। तो बाबा के तो ये महावाक्य हैं, लेकिन जब आप 8 तक पहुंचेंगे तब आप एक अलग दुनिया में होंगे। जिनकी बातें मैं अभी कर रहा हूं ना, अभी केवल थ्योरी लग रही है, लेकिन जब हम 8 तक पहुंचते हैं, उसे कुछ समय तक कंटिन्यू करते हैं, तब हम फील कर पाते हैं कि सचमुच मैं हूं कौन, वो कौन है। इसलिए बाबा का महावाक्य, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे विरले ही जानते हैं कि मैं क्या हूं, कौन हूं। ये बिना साधना की इस स्थिति के नहीं समझा जा सकता। और कितनी बड़ी विडंबना होगी ना कि हम अपने पिता को ही नहीं पहचान पाए। वो हमारे हैं, हमारे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, हमारी सखा हैं, हमारे सर्वस्व हैं, संसार है, लेकिन हम उन्हें पहचान ना पाए कि वो कौन है। और बाबा ये कहें कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे विरले ही पहचान, तो उस विरले में हम हैं या नहीं? कौन कौन उस विरले में शामिल होना चाहते हैं? कौन कौन? हम सभी चाहते हैं। यही वक्त है, और इसका केवल एकमात्र साधन हमारी साधना है। बाहर से डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डिस्कनेक्ट हो जाएं, लेकिन व्यर्थ से डिस्कनेक्ट। यदि मुझे अच्छी तपस्या करनी है तो मैं अंधा हो जाऊं, बहरा हो जाऊं, गूंगा हो जाऊं, जरूरी है। वो बाहरी अंधा बहरा नहीं, सूरदास की तरह मत निकल पड़िएगा कोई अति उमंग उत्साह संसार से अंधे है? मतलब सांसारिक चीजें मुझे ना दिखें, दिखे आत्मा, दिखे वो जिसे मुझे देखना है, दिखे पूरा मेरा चक्र, सुनाई दे भगवान की बातें अनहद नाद की तरह, बच्चे तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम्हें ये करना है, मैं तुमसे ये चाहता हूं, भगवान की आवाज मुझे कितनी सुनाई देती है। जैसे बाबा को भक्तों की आवाज सुनाई देती है, मुझे भगवान की आवाज सुनाई देती है, भक्तों की पुकार सुनाई देती है। मुख से भी मेरे वही बोल निकले जो आवश्यक है और ईश्वरीय महावाक्य है, उसके अलावा नहीं। तब हम साधना की उस उच्चतम स्थिति तक पहुंच पाएंगे, तब हमें सिद्धियां प्राप्त हो पाएंगे, बाबा के ही महावाक्य हैं, जो कम से कम संकल्प करते हैं, कम से कम संकल्प, उन्हें संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कम से कम और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वैसे भी कम संकल्प श्रेष्ठ ही होते हैं, व्यर्थ संकल्प ज्यादा होते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी बनकर हम इस भट्टी में अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, कैचिंग पावर, जितना मेरे अपने ऊपर कंट्रोल है, जितना मैं अपने कर्मेंद्रियों को रूल कर पाता हूं, उतना उसकी बातों को कैच कर पाऊंगा। तो अंधे बहरे गूंगे होंगे तभी तो कैच कर पाएंगे, यदि यहां एंगेज होंगे तो नहीं कर पाएंगे। सिद्धि स्वरूप मुझे बनते चलना है, तपस्या ही मेरी वाणी में जौहर लाएगा, वाणी में। एक शब्द बोला, आज हम कई कहते हैं कि हम कितनी सेवा करते हैं लेकिन सेवा बढ़ नहीं रही है, लोग नहीं बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की बात छोड़ो, उसके पहले की भी बात, अब तो समय लोगों को लाएगा, लेकिन तपस्या से वाणी में बल आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ज्ञान लिए अपने गुरु से और चल पड़े लोगों को ज्ञान सुनाने के लिए। काशी में गए, भाषण किया, सबने बहुत अच्छा अच्छा कहा, ताली बजा के चले गए। दूसरी जगह भाषण किया, बहुत अच्छा अच्छा किया, लोग ताली बजा के चले गए। तीसरी जगह किया, चौथी जगह किया, सब ताली बजा के चले गए। उनकी समझ में नहीं आया कि लोग ताली बजा के भाग क्यों रहे हैं, कोई ठहर क्यों नहीं रहा है। जब तक कोई मेरे पास रुकेगा नहीं, तब तक वो मेरा शिष्यत्व कैसे स्वीकार करेगा, ये ज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा। अपने गुरु के पास गए, पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा, तुमने अभी तक ज्ञान लिया है केवल, साधना नहीं की है। जब तक तुम साधना नहीं करोगे, अभी तुम्हारी बातें लोगों के दिमाग तक जा रहे हैं, साधना करोगे तो तुम्हारी बात लोगों के दिल तक पहुंचेगी। दयानंद जी गए, हिमालय में तपस्या की, फिर आए, फिर जब उन्होंने भाषण किया, लोगों ने तालियां भी बजाई, 5 रुके, दूसरे में 10 रुके, फिर 50 रुके, 100 रुके, और इस प्रकार आर्य समाज की स्थापना हुई। ये गहरी बात है हमारे लिए। हम भी लोगों को सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनाएं, हमारा काम ही है ब्राह्मणों का, लेकिन सुनाने के बाद लोगों के दिल में कितना उतर रहा है, लोग परिवर्तित कितने हो रहे हैं, ठहर कितने रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि वाणी में मैंने साधना का, योग का जौहर कितना भरा है। तब हमारी वाणी को मृदु भी करता है, शक्तिशाली भी करता है, बांधने योग्य बना देता है। लोगों को जोड़ देगी हमारी वाणी जब हम ऐसी तप और साधना में रहेंगे। इसलिए ऐसी तप की ओर बढ़ें, केवल बैठ के तप की बात नहीं है। हम सोचते हैं केवल बैठ के करें, हाँ तप हमारी अहम को भी खत्म करे। कई बार तपस्या अहम को भी बढ़ा देता है कि मैं 2 बजे से उठ के योग करता हूं, तुम क्या करते हो, तुम तो कुछ भी नहीं करते, मैंने इतनी तपस्या की है, तुमने क्या किया है। ये अहम को भी ना बढ़ा दे हमारे, लेकिन ये हमें निर्मल और निर्माण बनाने वाला हो। कई लोग बहुत तप करके रूखे सूखे हो जाते हैं, वो रियल तपस्या नहीं है। तप हमारा सर्वांगीण विकास करता है, तप लोगों को हमसे बांधता है, जोड़ता है और एक से कनेक्ट करता है। अहम भी नहीं, निर्मल होते चलेंगे हम। ऐसे नहीं कि हमारा गुस्सा और क्रोध और बढ़ता चले। कई जो तपस्वी हैं, दिखाया है ना, वो और भी ज्यादा क्रोधी थे, दुर्वासा की तरह तो बात बात में श्राप भी दे दिया करते थे। एक तपस्वी ने बहुत साधना की और उसके बाद जब वो तप ही कर रहा था तो एक चिड़िया पेड़ पे बैठी, उसने उसके ऊपर बिट कर दिया। तो उस तपस्वी ने आंखें खोली, गुस्से से देखा तो वो बेचारा चिड़िया जल गई। तो इसे बड़ा वो हो गया कि अरे वाह, मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो गई, अब मैं जिसे भी देखूंगा, जिसके लिए संकल्प करूंगा, वो जल जाएगा। अब वो जा रहा था, लगा कि हो सकता है मैं एक बार और एक्सपेरिमेंट कर लूं। एक पेड़ को ऐसे ही देखा उसने, गुस्से से देखा, पेड़ भी जल गया। अब वो भिक्षा मांगने के लिए गया कहीं, अब उसने भिक्षाम दे ही कहा, वो भिक्षा देने वाली माता जी थोड़ी देर से आई, तब तक इसे गुस्सा आ गया था। अब इसे लगा कि अब आने दो, जो भी आएगा उसको मैं गुस्से से देखूं, वो भी जल के भस्म हो जाएगा। अब जब माता जी आई भिक्षा देने के लिए तो उसने गुस्से से देखा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो वो माता जी ने कहा कि मैं चिड़िया नहीं हूं, अर्थात उसे ये अनुभूति कराए कि आपने जो साधना की उसे आपने अपने अहम में और व्यर्थ की चीजों में नष्ट कर दिया। हम तप करें लेकिन साथ ही ध्यान रखें कि वो व्यर्थ की वाणी में, व्यर्थ के विचारों में, दुर्भावना में, ईर्ष्या में नष्ट ना हो रहा हो, नहीं तो फिर बैलेंस होता चलेगा, खाया कमाया और खाया, कमाया और खाया वाली स्थिति ना हो। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो बैठ के साधना भी हो, अमृत वेले बहुत अच्छी तपस्या, सारे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसमें बहुत अच्छी, हम कोई ना कोई संकल्प लेके रखें कि इस ट्रैफिक कंट्रोल में मुझे ये करना है, अमृत वेले इस प्रकार से करना है, संध्या योग मेरा बहुत अच्छा हो। रात को भी जो बाबा ने कहा है योग करके ही सोएं, आधे घंटे बाबा ने कहा आधे घंटे योग करके सो, आधे घंटे ना भी हो तो 15 मिनट 10 मिनट हम योग करके जरूर सोएं, जितना वक्त मिलता है बैठ करके अपने आप को एकाग्र करने की सुंदर साधना करें। और इसके अलावा कर्म योग की भी अच्छी प्रैक्टिस हो, क्योंकि केवल तप बैठ के ही नहीं लेकिन कर्म में भी, जो बाबा ने कुछ मुरलियों पहले कहा कि जैसा कर्म हो उसके अनुसार स्वमान फिक्स करो, अपनी मन बुद्धि की दिनचर्या बनाओ। पता तो होता है कि कौन सा कर्म मुझे करना है, तो इस कर्म के साथ मुझे ये स्वमान लेना है, इस कर्म के साथ ये स्वमान लेना है, ऐसे सुंदर स्वमानों की हम कर्म के साथ लिस्ट बना करके रखें कि ऐसे ऐसे मुझे सारे दिन अभ्यास करना है। या बाबा ने ये कहा कि हर घंटे में एक बार कम से कम पांचों स्वरूपों की ड्रिल कर लो, हम उसे भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। या फिर एक सिंपल सी ड्रिल, बहुत सारी ड्रिल्स हो सकती हैं, एक सिंपल सी ड्रिल भी हम कर सकते हैं 1 2 3 की, इसको अभी अभी हम लोग करेंगे। 1 सेल्फ के लिए, 1 कहा सेल्फ अर्थात सोल, 2 सुप्रीम सोल सुप्रीम, और 3 सराउंडिंग सकाश। तो ड्रिल इस प्रकार भी कर सकते हैं 1 2 एंड देन सराउंडिंग को हम आत्मा के रूप में देखें, मैं आत्मा परमात्मा ऊपर 2 में, 3 में मैं जिससे बात कर रही हूं या जो भी मुझे चारों तरफ दिख रहे हैं सब आत्माएं हैं। कभी इसके साथ हम कोई गुण जोड़ लें कि जैसे मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और जिनको भी फिर मैं देखूं उन्हें मैं शक्तियों की सकाश दूं, इसकी सुंदर हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी योग की भट्ठी में, ये योग साधना भट्ठी हमें गहराई से अपने आप को देखने के लिए है, चेक करने के लिए है। योग के आधारों पर भी जरूर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि तपस्या कुछ आधारों पर भी बहुत निर्भर करती है। मेरा प्यार निर्मल और निस्वार्थ संपूर्ण रूप से उससे हो, मेरी पवित्रता जितनी अच्छी होगी मेरी साधना मेरी तपस्या उतनी अच्छी होगी, ईश्वरीय मर्यादाओं पे जितने अच्छे रहेंगे उतनी अच्छी साधना होगी, उतना ही बुद्धि एकाग्र होगा। साथ ही मन जितना सांसारिक बातों से व्यर्थ से विरक्त होगा उतना ज्यादा हम एकाग्र हो पाएंगे। तो अच्छी इन सब बातों पर गहराई से चिंतन करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए अब इस ड्रिल को करते हैं हम लोग, करेंगे ना पूरी एकाग्रता से, मन बुद्धि और कहीं नहीं, संपूर्ण रूप से हम एक पे एकाग्र होकर 1 2 3 के साथ ड्रिल करेंगे। 1 आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, भ्रिकुटी तख्त पर चमकती हुई मणि, चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर मैं आत्मा, देखें अपने स्वरूप को, दो। देखें परम धाम में बाबा को, महाज्योति को, बाबा का दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। मन बुद्धि से जैसे मैं उनके स्वरूप पर एकाग्र, देखे मेरे चारों तरफ भी मेरे आत्मा भाई, चमकती हुई मणियां, फिर से वन एक गुण के साथ मैं आत्मा, पवित्रता का पुंज, परम पवित्र, स्थित हो जाए अपने आत्म स्वरूप में। मुझसे शांति, पवित्रता और शक्ति की तरंगें चारों ओर फैलते हुए के सागर बाबा, पवित्रता के सागर, सर्वशक्तिवान, जैसे उनकी शांति, पवित्रता और शक्ति के किरणें मुझ में बाबा से आ रही हैं और सब आत्माओं को जा रही हैं। दिल की बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं आप सभी को, जिस लक्ष्य से भट्टी में आए हैं वो लक्ष्य संपूर्ण हो, संपन्न हो, यहाँ से फरिश्ते बनकर उड़ते हुए जाएं और सबको फरिश्ते का साक्षात्कार कराएं, बाबा का साक्षात्कार कराएं। अब शांति।
बहुत सुंदर अभ्यास और आंतरिक तपस्या, एक हाथ हिलाकर शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं, आभार मानते हैं।